نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں سے ہم غزوہ احد کے بالکل اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں. کس طرح سے مسلمانوں نے آخری وقت تک بہترین طریقے سے لڑائی کی اور مقابلہ کیا اور ایک بہت بڑی شکست کو ڈرا میں بدل دیا, یعنی نہ وہ جیتے نہ ہم جیتے, اور مسلمان دوبارہ متحد ہوئے. دشمن جو تھے وہ فائدہ نہ لے سکے جو لے سکتے تھے, لیکن ان کو وہ شکست بھی نہ ملی جو کہ وہ شروع میں لے چکے تھے. اب آخر میں ہوتا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھاٹی میں پہنچ چکے ہیں بہت سارے خطروں میں سے نکلنے کے بعد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال میں پانی بھر کر لائے. مہر اس پتھر میں بنا ہوا ایک گڑھا ہوتا ہے جس میں تھوڑا سا پانی آتا ہے, جیسے ایک مٹی کا پیالہ ہوتا ہے نا, اسی طرح کی ایک چیز تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں پانی لائے. کہتے ہیں کہ یوہد کے ایک چشمے کا پانی تھا. حضرت علی نے وہ پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کے لیے پیش کیا. آپ کو اس میں تھوڑی سی بو آئی, اس لیے آپ نے اسے پیا تو نہیں, لیکن اس سے اپنے چہرے کا خون دھویا, سر پر بھی ڈالا, اور اس حالت میں آپ فرما رہے تھے کہ اس شخص پر اللہ کا سخت غضب ہو جس نے اس کے نبی کے چہرے کو خون آلود کیا. دیکھیے, دو لوگ قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں ہوں گے, ایک وہ جس نے نبی کو مارا اور دوسرا وہ جس کو نبی نے مارا. پیچھے ہم دیکھ چکے کہ عبی بن خلف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مارا. اسی طرح جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو زخمی کیا تو یقیناً وہ بھی اللہ کے غضب میں ہی ہوں گے. حضرت سہل کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کا زخم کس نے دھویا, پانی کس نے بہایا اور علاج کس چیز سے کیا گیا. پھر خود ہی بتاتے ہیں کہ آپ کی لخت جگر فاطمہ آپ کا زخم دھو رہی تھیں, حضرت علی ڈھال سے پانی بہا رہے تھے. جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ پانی کے سبب خون بڑھتا ہی جا رہا ہے تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلا کر چپکا دیا جس سے خون رک گیا. اللہم صلی علی محمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے تکلیف سہنی پڑی اللہ کے راستے میں. پھر محمد بن مسلمہ میٹھا پانی لائے, اچھا ذائقہ تھا. اللہ کے نبی نے وہ پانی پیا, آپ کو دعا دی. زخم کے اثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز بیٹھے بیٹھے پڑھی, اور صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز ادا کی. اب یہاں سے جنگ کا بالکل وہ منظر ہے کہ دشمن بھاگ چکے, مشرقین واپسی کی تیاری میں. ابو سفیان جب لوہت پر نمودار ہوتے ہیں اور اونچی آواز سے کہتے ہیں, حلفی کو محمد, کیا تم میں محمد ہے؟ لوگ خاموش رہے. پھر کہنے لگے, کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ہیں؟ مراد ابو بکر تھے. لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا. پھر کہنے لگے, حلفی کو عمر بن خطاب, عمر بن خطاب ہے. اب بھی لوگ خاموش رہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ سوالوں کا جواب نہ دیں. ڈسپلن دیکھیے کتنا تھا, جب کہہ دیا کچھ نہیں کہنا تو نہیں کہا. جب تینوں باتوں کا جواب نہ ملا ابو سفیان کو, ان کو پتہ تھا کہ اسلام ان تین شخصیات کے ذریعے قائم ہے, تو کہنے لگے, چلو بھائی ان تینوں سے جان چھوٹی, فرصت ہو گئی. یہ بات سن کر حضرت عمر بے قابو ہوئے, بولے, او اللہ کے دشمن, جن کا تو نے نام لیا وہ سب زندہ ہیں, اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا, تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے, لیکن نہ میں نے اس کا حکم دیا اور نہ میں نے برا منایا. پھر نعرہ لگانے لگا, اولو حبل, یعنی حبل بلند ہو, جیسے کہتے ہیں نا جے فلاں, یا جیسے ہم زندہ باد کہتے ہیں. بعض روایت میں اس سے تھوڑا سا فرق بھی آتا ہے کہ انہوں نے جب تک یہ سب تینوں کا نام لیا, اللہ کے نبی کا نام لیا, خاموش رہے, لیکن اس نے بعد میں جو ہی ایل الحبل کہا, یا اول الحبل, اس پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جواب کیوں نہیں دیتے. تو صحابہ نے جواب دیا, کیا کہیں؟ تو آپ نے فرمایا, کہو اللہ اعلیٰ و اجل, اللہ اعلیٰ اور برتر. پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا, لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارے لیے تو عزا ہے اور تمہاری کوئی عزا ہی نہیں, یعنی اپنی دیوی پہ فخر کر رہے تھے. اس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا, جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہا, کیا جواب دیں؟ کہا, بولو اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا, کتنا اچھا کارنامہ رہا, آج کا دن جنگ بدر کا بدلہ ہے, اور لڑائی تو ڈول ہے. ڈول کا مطلب ہے کہ کبھی ہم جیتے ہیں کبھی تم, کبھی ڈول بھرتا ہے کبھی خالی ہوتا ہے, مراد یہ تھا کہ اٹس آور وکٹری. حضرت عمر نے جواب دیا, برابر نہیں ہے, ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے جہنم میں, برابری کیسے؟ ظاہر دیکھنے میں برابر لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں تو برابری نہیں ہے. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا, عمر میرے قریب آؤ, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जाओ देखो क्या कहता है। वो करीब आए तो अबू सुफियान ने कहा, उमर, मैं खुदा का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया? हज़रत उमर ने कहा, वल्लाही नहीं, बल्कि इस वक्त वो तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। अबू सुफियान ने कहा, तुम मेरे नज़दीक इब्ने कमा से ज़्यादा सच्चे और रास्तबाज़ हो। इससे आप देखिए कि उनके दिल की बातें पता चलती हैं, किस तरह वो अपने कुफर पर, शिर्क पे खुश थे, लेकिन मुसलमानों को उस हौसले और सब्र के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ डील करने का हुक्म दिया। फिर इसके बाद हुआ क्या कि अबू सुफियान और उसके साथी वापस जाने लगे। अबू सुफियान कहने लगे, अगले साल बदर में फिर लड़ने का वादा है। रसूलुल्लाह ने कहा, ठीक है, इनसे कह दो ठीक है, हमारे और तुम्हारे दरमियान ये बात तय हो गई। इसके बाद अल्लाह के नबी ने हज़रत अली को रवाना किया और कहा कि मुशरिक कौम के पीछे जाओ और देखो वो क्या कर रहे हैं और इनका इरादा क्या है। अगर उन्होंने घोड़े पहलू में रखे हों और ऊँटों पर सवार हों तो इनका इरादा मक्का का है, और अगर घोड़ों पर सवार हों और ऊँट हांग कर ले जाएं तो मदीने का इरादा है। यहाँ से भी आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विजडम दिखती है, क्योंकि घोड़े तो जंगों में काम आते थे और सहराओं में ऊँट चलते थे। ऊँटों पर बैठने का मतलब ये कि अब ये वापस जा रहे हैं। फिर फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर उन्होंने मदीने का इरादा किया तो मैं मदीना जाकर इनसे दो दो हाथ करूँगा। हज़रत अली कहते हैं कि इसके बाद मैं पीछे निकला तो देखा कि उन्होंने घोड़े पहलू में रखे हैं और ऊँटों पर सवार हैं और मक्का का रुख है। तो यहाँ से हिकमतें भी हम सीखेंगे ना, लोगों से डील करने की, किस तरीके से परखा जा सकता है कि फ़लाँ आप क्या सोच रहा है। दूसरी तरफ से आप कह दीजिए कि साइकोलॉजी भी सीख जाता है इंसान, अल्लाह के काम करने के साथ साथ लोगों की नफ्सियात को भी बहुत अच्छी तरह से वो जान लेता है। अब एक मसला था कि जो शहीद हो चुके हैं, जो ज़ख्मी हैं, उनको ठिकाने लगाया जाए। जब कुरैश वापस गए तो मुसलमान अपने शहीदों और ज़ख्मियों की खोज लेने के लिए फ़ारिग हुए। हज़रत ज़ैद कहते हैं कि उहद के दिन नबी सल्लम ने मुझे भेजा कि मैं साद बिन रबी को तलाश करूं, और फरमाया, अगर वो दिखाई दें तो उनको मेरा सलाम कहना और ये कहना कि रसूलुल्लाह पूछ रहे हैं कि तुम अपने आप को कैसा पा रहे हो। हज़रत ज़ैद कहते हैं कि जब मैं मकतूलीन के दरमियान चक्कर लगा रहा था तो मैं इनके पास पहुंचा और वो आखिरी सांस ले रहे थे। इन्हें नेज़े, तलवार और तीर के 70 से ज़्यादा ज़ख़म आए थे। मैंने कहा है, साथ अल्लाह के रसूल आपको सलाम कहते हैं और पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ अपने आप को कैसा पा रहे हो। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह को सलाम, आपसे अर्ज़ करो कि अल्लाह के रसूल, जन्नत की खुशबू पा रहा हूँ, और मेरी कौम अनसार से कहो कि अगर तुम में से एक आंख भी हिलती रही और दुश्मन रसूलुल्लाह तक पहुँच गया तो तुम्हारे लिए अल्लाह के नज़दीक कोई उज़र ना होगा। और इसके साथ इनकी रूह निकल गई। मतलब जाते जाते अपनी कौम को पैगाम दे गए कि अब अल्लाह के नबी का दिफा करना, मेरे बाद तुम भी इसी चीज़ पर रहना। हम में से कितने लोग हैं जो दीन के कामों के लिए अपने घर वालों, अपने बच्चों और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को यही वसीयत करते हैं, जो काम मैं कर रही थी या जो मैं कर सकती थी मैंने किया, लेकिन अब मेरे बाद तुमने भी यही काम करना है। इसी तरह ज़ख्मियों में एक शख्स उस सैरम भी थे। इनका नाम अमर बिन साबित था। इनमें भी थोड़ी सी ज़िंदगी की रमक मौजूद थी। इससे कबल इनको इस्लाम की दावत दी जाती थी मगर कबूल नहीं करते थे। इसलिए लोगों ने हैरत से कहा कि ये सैरम कैसे आ गया, इसे तो हमने इस हालत में छोड़ा था कि वो इस दीन का इनकारी था। इनसे पूछा कि तुम्हें यहाँ क्या चीज़ ले आई। कहा, कौम की हिमायत का जोश या इस्लाम की रग़बत। उन्होंने कहा कि इस्लाम की रग़बत, हकीकत में मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया और इसके बाद अल्लाह के नबी की हिमायत में शरीक जंग हुआ, यहाँ तक कि अब इस हालत से दो चार हूँ जो आप लोगों की आंखों के सामने है, और उसके साथ इसका इंतकाल हुआ। लोगों ने अल्लाह के नबी से जब इसके बारे में पूछा तो आपने फरमाया कि वो जन्नतियों में से हैं। हज़रत अबू हुरैरा कहा करते थे कि हालांकि उसने अल्लाह के लिए एक वक्त की नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी, यानी वक्त आया ही नहीं नमाज का और शहीद हो गए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, अमल की नौबत ही नहीं आई, आती तो कर लेते ना। यहाँ से हमें अल्लाह ताला का इंसाफ भी पता चलता है कि बस लोगों को सिर्फ उनके दिल की सच्चाई पे किसी अमल का मौका दिए बगैर जन्नत भी दे देगा, और कई अमल करके अपने ज़ाया भी कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में ना करे। इसी तरह ज़ख्मियों में कुज़मान भी था। इसने जंग में खूब बहादुरी दिखाई और 7-8 मुशरिकों को अकेले ही मार दिया। जब ये मिला تو زخموں سے چور تھا. لوگ اسے اٹھا کر بنو ظفر کے محلے میں لے گئے اور مسلمانوں نے اسے خوشخبری سنائی. کہنے لگا، واللہ ہی میری جنگ تو صرف اپنی قوم کی عزت کے لیے تھی، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں تو لڑتا ہی نہ. اور اس کے بعد جب اس کے زخموں کی شدت بڑھی تو اس نے خود کو ذبح کر کے خودکشی کر لی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا جاتا تو آپ فرماتے کہ وہ جہنمی ہے. اس واقعے نے آپ کی پیشن گوئی پر مہر ثابت کر دی کہ جو لوگ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے بجائے وطن کو یا کسی دوسری چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لڑیں گے، ان کا انجام یہی ہے، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے جھنڈے تلے کیوں نہ لڑے. کتنا زبردست نقطہ ہم سب کے لیے. آپ دیکھیے کہ کام ایک ہی ہے، 7-8 کافروں کو مار دیا اور خود بھی زخمی ہے، لیکن دل کی بات کہ اللہ کو اس طرح شرک نہیں پسند کہ جی میں اس کے لیے بھی کروں اس کے لیے بھی کروں. کتنا خوف آتا ہے، ٹوٹی پوٹی اپنی بچی کھچی نیکیاں ہیں، اس کے اندر بھی اگر ہمارے کہیں کوئی اور جذبہ آ گیا، کوئی مال کی محبت آ گئی، کوئی نام کی محبت آ گئی، کوئی شہرت، کوئی دکھاوا، دوسروں میں واہ واہ ہو جائے، میں مشہور ہو جاؤں، لوگوں کو میرا نام پتہ لگ جائے، تو آپ دیکھیے کہ اللہ تو ان کی اگر اتنی جنگوں میں گئی ہوئی چیزیں اللہ نے ہاتھ میں دے دی تو ہمارا یہ سننا سنانا کیا بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ضائع نہ کرنا، ہمارے اندر اگر کہیں کوئی کھوٹ ہو تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے. اس کے بعد ایک اور شخص جو مقتولین میں تھے، وہ بنو سلبہ کا ایک یہودی تھا. اس نے اس وقت جبکہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اپنی قوم سے کہا کہ اے یہود کی جماعت، خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تم پر فرض ہے. یہود نے کہا، مگر آج تو ہفتے کا دن ہے. اس نے کہا، تمہارے لیے اب کوئی سبت نہیں. پھر اس نے اپنی تلوار لی، ساز و سامان اٹھایا اور بولا، اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ اس میں جو چاہیں گے کریں گے. اس کے بعد میدان جنگ میں گیا اور لڑتے بھڑتے مارا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام لے کر کہ محرق بہترین یہودی تھا. ہر ایک کا معاملہ لگا، ادھر سے لگتا ہے نا کہ قیامت کے دن ہر بندے کا حساب اس کے اپنے حساب سے ہوگا، کوئی کسی کی اوٹ میں چھپ کے نہیں پہنچ جائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا، چلو ابھی ایک نے چھکا لگا دیا، ساری ٹیم کی فتح. نہیں، ہماری فتح پوری دنیا کے سامنے آ جائے لیکن اگر اس میں ہماری نیت نہیں ہے، ہمارا کھوٹ ہے، تو ہمیں اس سے فائدہ نہیں ملے گا. اسی طرح اللہ کے نبی نے شہدا کا معائنہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے، اللہ قیامت کے روز اسے اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا. رنگ تو خون کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی ہوگی. کچھ صحابہ نے اپنے شہدا کو مدینہ منتقل کیا. آپ نے ان کو حکم دیا کہ ان کو واپس لا کر ان کی شہادت گاہوں میں دفن کریں اور ان کے ہتھیار اور ان کے جو جنگ کے لباس تھے وہ اتار لیے جائیں. پھر ان کو غسل دیے بغیر جس حالت میں ہوں اسی میں دفن کر دیا جائے. اور آپ دو دو تین تین شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن فرما رہے تھے. دو دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا لپیٹ دیتے اور دریافت فرماتے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے. لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اس کو قبر میں پہلے ڈالتے اور فرمایا قیامت کے روز میں ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا. یعنی یہاں بھی آپ دیکھیے کہ قرآن کی عزت اور بات پتہ چلتی ہے کہ جس کو قرآن زیادہ آتا ہوگا اس کو پہل دے دی گئی ہر چیز میں. عبداللہ بن عمر بن حرام اور عمر بن جموح ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی. وہ کہتے ہیں نا، دنیا میں بھی ساتھ تھے تو مر کے بھی ساتھ تھے، ایسی کیفیت ان کی ہوئی. زخمیوں میں حضرت حنزلہ کی لاش غائب تھی. تلاش کے بعد ایک ایسی جگہ پر ملی کہ جہاں زمین پر پڑی ہوئی تھی لیکن اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا. رسول اللہ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں. پوچھا جاؤ ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے. انہوں نے بتایا کہ حضرت حنزلہ جب یہاں آئے تھے تو جنابت میں تھے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کہا کہ غم نہ کرو، ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. ادھر سے پھر ان کا نام غسیل الملائکہ یعنی فرشتوں کے غسل دیے ہوئے معروف ہو گیا. حضرت حمزہ جو آپ کے چچا بھی تھے اور آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، دوستی بھی تھی، ان کا مسئلہ کیا گیا. آپ انتہائی غم زدہ ہوئے. ہندہ نے آپ کا کلیجہ چبایا تھا. آپ کی پھوپھی صفیہ آئیں، وہ بھی اپنے بھائی حمزہ کو دیکھنا چاہتی تھیں लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बेटे हज़रत ज़ुबैर से कहा कि इनको वापस ले जाए, वो अपने भाई का हाल देख नहीं सकेंगी। नबी सल्लम को पता था कि बहनों के दिल नरम होते हैं भाइयों के लिए, मगर हज़रत सफ़िया ने कहा, आखिर ऐसा क्यों? मुझे मालूम हो चुका है कि मेरे भाई का मसला किया गया, लेकिन ये अल्लाह की राह में है, जो कुछ हुआ मैं इस पर राज़ी हूँ, मैं सवाब समझते हुए इंशाल्लाह ज़रूर सब्र करूँगी। इसके बाद वो हज़रत हमज़ा के पास आईं, उनको देखा और उनके लिए दुआ की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। फिर अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि इनको अब्दुल्ला बिन जहश के साथ दफन किया जाए। वो हज़रत हमज़ा के भांजे भी थे और रज़ाई भाई थे। यहाँ देखिए कि कफन भी पूरे नहीं थे, कब्रें भी पूरी नहीं थी, एक एक कब्र में दो दो को डाला जा रहा है, इतनी तंगदस्ती का हाल था। हज़रत इब्ने मसूद कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमज़ा की शहादत पर जिस तरह रोए, इससे बढ़कर रोते हुए हमने आपको कभी नहीं देखा। आपने इन्हें क़िबले की तरफ रखा, फिर इनके जनाजे पर खड़े हुए और इस तरह रोए कि आवाज़ बुलंद हो गई। शुहदा का मंज़र बड़ा ही दिल को तड़पाने वाला था। हज़रत हबाब कहते हैं कि हज़रत हमज़ा के लिए एक स्याह धारियों वाली चादर के सिवा कोई कफन न मिल सका। ये चादर सर पर डाली जाती तो पाँव खुल जाते, और पाँव पर डाली जाती तो सर खुल जाता। बिलाखिर चादर से सर ढक दिया गया और पाँव पर इसखर घास डाल दी गई। ये कैसे हौसलों वाले लोग थे कि इनके पास कपड़े भी पूरे नहीं होते थे, लेकिन इस्लाम के लिए कटने मरने के लिए तैयार हो जाते थे। हज़रत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मुसअब बिन उमैर की शहादत हुई, वो मुझसे बेहतर थे, तो इन्हें एक चादर के अंदर कफनाया गया। हालत ये थी कि अगर इनका सर ढांका जाता तो पाँव खुल जाते, पाँव ढाके जाते तो सर खुल जाता। इनकी यही कैफियत हज़रत हबाब ने भी बताई, और यहाँ कहा, इसमें थोड़ा सा इजाफा किया कि चादर से इनका सर ढांप दो और पाँव पर इसखर घाट डाल दो। आज हम जमजम में डूबे हुए कफन लेके रखते हैं और न जाने क्या कुछ, मरने पे भी अब हमें सिंघार करना होता है, कहीं फूलों की पत्तियाँ डलती हैं, कहीं गोटा किनारी। अल्लाह अकबर, दुआ कीजिए कि हमारे दिल में इस्लाम की वो सच्ची तड़प आ जाए जो हकीकत में हमें कुर्बानियों वाले दीन पर ले जाए, कि इसी के साथ हम अपने आप को अल्लाह की नज़रों में सुरखरू करेंगे। हमें ऐसे लगता है कि ये ग़ज़वा बहुत ही लंबा हो गया, लेकिन आप सोचिए कि जो इस मौके पे लड़े थे उनके मुकाम और दर्जे कितने बुलंद हुए। जब शुहदा को समेटना पड़ा तो उस दौरान भी कई ईमान अफरोज़ वाक़यात मिले कि जिसके बाद वाकई एहसास हो गया कि इंसान का हौसला बड़ा हो तो वो कुर्बानियाँ दे के भी नहीं थकता। इसी तरह मुसनद अहमद की रिवायत में आता है कि जब मुशरिकीन वापस चले गए उहद के दिन, तो अल्लाह के नबी ने सहाबे कराम से कहा कि बराबर हो जाओ, यानी एक जैसे हो जाओ, सफ़े बांधो, और मैं अल्लाह ताला की तारीफ़ करना चाहता हूँ। इस बात को सुन के सहाबा कराम ने आपके पीछे सफ़े बांधी। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह तेरे ही लिए सारी हमद है, ए अल्लाह जिस चीज़ को तू कुशादा कर दे इसे कोई तंग नहीं कर सकता, और जिस चीज़ को तू तंग कर दे इसे कोई कुशादा नहीं कर सकता। जिस शख्स को तू गुमराह कर दे इसे कोई हिदायत नहीं दे सकता, और जिसको तू हिदायत दे इसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। जिस चीज़ को तू रोक दे इसे कोई दे नहीं सकता, और जो चीज़ तू दे दे इसे कोई रोक नहीं सकता। जिस चीज़ को तू दूर कर दे इसे कोई करीब नहीं कर सकता, और जिस चीज़ को तू करीब कर दे इसे कोई दूर नहीं कर सकता। ऐ अल्लाह हमारे ऊपर अपनी बरकतें रहमतें और फजल अता फरमा। आपको इस दुआ में अल्लाह के नबी का अकीदा भी देखता होगा, और जो अल्लाह के नबी का अकीदा है वही हमारा अकीदा होना चाहिए। अगर मुसलमानों का यकीन इस बात पे हो जाए ना कि अल्लाह देना चाहे तो कोई ले नहीं सकता, लेना चाहे तो कोई दे नहीं सकता, तो यकीन करें कि हम जरूरतमंद हो जाएं, ना हम लोगों से डरें, ना हम दुनियादारी की बातें करें। फिर एक बड़ी प्यारी दुआ आपने मांगी कि अल्लाह मैं तुझसे एक बरकरार रहने वाली नेमत का सवाल करता हूँ जो ना टले ना ख़त्म हो। अल्लाह मैं तुझसे फ़ख्र के दिन मदद का और खौफ के दिन अमन का सवाल करता हूँ। ऐ अल्लाह जो कुछ तूने हमें दिया है इसके शर से, और जो कुछ नहीं दिया इसके भी शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। ऐ अल्लाह हमारे नज़दीक ईमान को महबूब कर दे और हमारे दिलों में खुशनुमा बना दे, कुफर और फिस को नाफरमानी को नागवार बना दे, और हमें हिदायत याफ्ता लोगों में कर दे। ऐ अल्लाह हमें मुसलमान रखते हुए वफात दे, और मुसलमान ही रखते हुए ज़िंदा रख, और रसवाई और फितने से दो चार किए बगैर सालेहीन में शामिल फरमा। ऐ अल्लाह तूने इन काफ़रों को मार और इन पर सख्ती कर और अजाब कर जो तेरे पैगंबरों को छुटलाते और तेरी राह से रोकते हैं। اے اللہ ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی، یا الہ الحق۔ امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں موجود ہے حدیث، دعائیں بہت ہی خوبصورت ہیں، اردو میں ہی کیوں نہ مانگیں، لیکن ان کو بھی اپنی زبان پہ رکھیے، کیونکہ بندہ مومن جو چیز اپنی کوششوں سے حاصل نہیں کر پاتا پھر وہ دعاؤں سے حاصل کرتا ہے۔ شہدا کو دفن کیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی، نماز سے فارغ ہو کر اللہ کے نبی نے مدینہ کا رخ کیا۔ اس دوران بھی کئی واقعات ملے جس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ایمان کے کتنے اعلیٰ درجوں میں تھے۔ اسی میں سے چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ راستے میں اللہ کے نبی کی ملاقات حضرت حمنہ بنت جحش سے ہوئی، ان کے بھائی عبداللہ بن جحش کی شہادت کی خبر دی گئی، انہوں نے انا للہ پڑھی، دعائے مغفرت کی۔ پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر دی گئی، پھر انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ پھر ان کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر دی گئی تو تڑپ کر چیخ اٹھی اور رونے لگیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عورت کا شوہر اس کے ہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ سوچیے ایک ایک بندے کو اتنے اتنے رشتہ داروں کی خبر ملتی تھی، کیا پھر آپ سوچیے کہ ان کفار کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی نرم گوش آ سکتا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کو ستایا، گھروں سے نکالا؟ چونکہ ہم ان چیزوں کو جانتے نہیں تو شاید ہمارے بھی دلوں میں کبھی آنے لگتا ہو، نہیں اللہ کے نبی کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر جنگے نہ کرتے، ہنستے ہی رہتے، کوئی بات نہیں ہم مسلم جو ہیں تو پھر ہمیں مارو آ کے۔ ہاں نہیں، اگر آپ اپنے دل پہ لے کے دیکھیں، جس کی وجہ سے ایک رشتہ دار مارا جائے اس کے اوپر کتنا غصہ آئے، اور جن کی وجہ سے اتنے مارے گئے ان پہ کتنا غصہ نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح آپ کا گزر بنو دینار کی ایک عورت کے پاس سے ہوا، جن کے شوہر، بھائی اور والد تینوں شہید ہو چکے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگی، رسول اللہ کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ ام فلاں، اللہ کے نبی خیر سے ہیں اور الحمدللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں، مراد یہ کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو خاتون کہنے لگی، نہیں مجھے دکھاؤ، میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب لوگوں نے اشارے سے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے دکھایا تو بے ساختہ پکار اٹھی، کل مصیبت بعد اجل، آپ کے بعد ہر مصیبت پھیج ہے، یعنی اگر آپ ٹھیک ہیں تو پھر میرے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آئیں گی میں ان کو برداشت کر سکوں گی۔ یہ جملے کس کی زبان سے نکلتے ہیں؟ جس کے دل میں سچا ایمان ہوتا ہے اور سچی محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح سعد بن معاذ کی والدہ آپ کے پاس دوڑتی بھی آئیں۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے، کہنے لگے، اللہ کے رسول، یہ میری والدہ ہے۔ آپ نے فرمایا، انہیں مرحبا ہو۔ اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے رک گئے۔ جب وہ قریب آئیں تو آپ نے ان کے صاحبزادے عمر بن معاذ کی شہادت پر تعزیت کے کلمات کہتے ہوئے ان کو تسلی دی۔ اللہ اکبر، صبر کی تلقین کی، کہنے لگی، جب میں نے آپ کو بسلامت دیکھ لیا تو میرے لیے اب ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا، ام سعد تم خوش ہو جاؤ اور شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں، اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان کی شفاعت قبول کی گئی۔ یہ ایک خاص بات ہے، یعنی ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دنیا میں ہی یہ خوشخبریاں مل گئی تھیں، سب جنت میں ہوں گے۔ ہیں کہنے لگے، اللہ کے نبی، ان کے پیچھے رہنے والوں کے لیے بھی دعا کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ ان کے دلوں کا غم دور کر اور ان کی مصیبت کا بدل عطا فرما اور باقی ماندگان کی بھی بہترین دیکھ بھال فرما۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جو کام کرتے ہیں وہ دعائیں بھی لیتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی خیر و برکت کی باتیں ملتی ہیں اور آخرت کی باتیں بھی ملتی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ 7 شوال تھی سن 3 ہجری کا، جب شام کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس پہنچے، گھر پہنچ کر اپنی تلوار حضرت فاطمہ کو دی، کہا، بیٹی اس کا خون دھو دو، خدا کی قسم یہ آج میرے لیے بہت صحیح ثابت ہوئی۔ پھر حضرت علی نے بھی تلوار اپنی دی اور کہا، اس کا بھی خون دھو دو، آج یہ بھی بہت اچھی ثابت ہوئی۔ اس پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم نے بہت اچھی آج جنگ لڑی، یعنی کوئی تم ڈرے نہیں، کمزور نہیں ہوئے، تو سہل بن حنیف اور ابو دجانہ نے بھی آج بہت اچھی جنگ کی۔ یعنی اب دیکھیے کہ وہ جنگ کے بعد اس طرح باتیں کرتے تھے جیسے ہم فنکشنز کے بعد باتیں کرتے ہیں، فیڈ بیک لیتے دیتے ہوئے وہ لوگ دکھتے ہیں کہ ان کو اپنی ان جنگوں سے کتنی خوشی ملتی تھی کہ ہم آج اللہ کے لیے نکلے اور اللہ کے لیے لڑے۔ 70 کے قریب شہداء مسلمانوں کے شہید ہوئے، جس میں سے اکثریت انصار کی تھی۔ سبحان اللہ، یہ بھی بڑی بات ہے، مہاجرین ہجرت کر کے اپنی قربانیاں دے چکے تھے، اپنے اسلام سے سچائی کے اظہار کو دکھا چکے تھے، और अब अंसार की बारी थी। ऐसे ही होता है, पुराने लोग अपना काम कर चुके होते हैं, फिर वो दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं तो नया खून आ गया आता है और वो फिर आगे बढ़ बढ़ के वही काम करते हैं। 65 शहीद हुए थे अफरा टोटल 65 अंसार में, जिसमें 41 41 हजरत से थे और 24 24 औस से थे। एक आदमी यहूद से कत्ल हुआ था और मुहाजरीन शहदा की तादाद सिर्फ 4 थी। इससे भी देखिए आपको सीरत के कितने खूबसूरत पहलू समझ आते हैं ना। अल्लाह अकबर। मकतूलीन आप देखिए, कुरैश की तरफ से जो मारे गए थे वो 22 थे, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने इस जंग में 70 लोगों को अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने का मौका दिया। मदीने में हंगामी हालत का इजहार था, ओहद से वापसी पे बहुत ज़्यादा ख़तरा था, किस बात का कि दुश्मन कहीं वापस ना आ जाए। एक तरफ जंग में चूर चूर थे, दूसरी तरफ गम यह था कि दुश्मन वापस आ गया तो फिर क्या होगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत भी बड़ी ज़रूरी थी और हर तरफ से खदशात थे। पूरी रात जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल पर अल्लाह के नबी ने गौर किया। आपको अंदेशा था कि कहीं दुश्मन मैदान जंग में अपना पल्ला भारी देखते हुए वापस ना आ जाएं। उन्होंने हमसे कोई फ़ायदा तो उठाया नहीं, उनको दूर जाके नदामत होगी कि हमने क्या किया। हालांकि हालात ऐसे बन चुके थे कि ये मदीना पे कब्ज़ा कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला मत मार देता ना इंसान की, इसलिए आपने फ़ैसला किया कि बहरहाल मक्की लश्कर का ताकुब करना चाहिए। ये है हौसले, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। किस तरीके से लोग हिम्मत हार देते हैं, लेकिन लीडर्स हिम्मत नहीं हारते। यहाँ से आप देखिए, एक लीडर, एक एक इंसान जो आगे लेके दूसरों को चलता है, उनके हौसले कितने बुलंद होने चाहिए। हम कहते हैं जी हम तो थक गए हैं जी, हम सो रहे हैं जी। नहीं, रिवायात में था कि अगले ही दिन यकशंबा 8 शवाल 3 हिजरी को सुबह सुबह आपने ऐलान किया कि फिर जाना है दुश्मन के लिए, और ये भी कहा कि हमारे साथ सिर्फ वही जाएगा जो ओहद में मौजूद था। अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा मैं चलूँ, आपने कहा नहीं जी आप नहीं जा सकते। और जो मुसलमान थे वो ज़ख्मों से चूर, गम से निढाल, अंदेशा, खौफ। देखिए फतह हो जाए या फंक्शन अच्छा हो जाए ना, तो उस खुशी में सारी थकन दूर हो जाती है, लेकिन इस हालत में जब जज्बाती और जिस्मानी तौर पर चूर चूर थे, अल्लाह के नबी की बात पे किसी ने चूचा नहीं किया, चल पड़े। कहा ठीक है हम चलेंगे, कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगा। जाबिर बिन अब्दुल्ला ने इजाज़त मांगी क्योंकि योहद में नहीं शामिल हुए थे। कहने के अल्लाह के नबी मैं चाहता हूँ कि जब आप किसी जंग में जाएं तो मैं भी वहाँ जाऊँ, लेकिन इस जंग में मेरे बाप ने मुझे अपनी बच्चियों की देखभाल के लिए रोक दिया था, अब आप मुझे इजाज़त दें कि मैं आपके साथ चलूँ। तो आपने इनको इजाज़त दी। एक्सेप्शनल केसेस होते थे। और इस तरह मुसलमान नबी सल्लम के साथ निकले, 8 मील दूर हमरुल असद पर पहुँच कर खेमे लगा लिए। इसी क्याम में माबद बिन अबी माबद खुजाई नबी सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मुसलमान हुआ। कहते हैं कि वह अपने शिर्क पर कायम था, लेकिन अल्लाह के नबी का खैर ख्वाह था। आपको पता है कि ये माबद कौन है? ये वही उम्मे माबद के नाते से अगर आप देखें तो वो भी कबीला खुजाई थी जहाँ हिजरत के सफ़र में नबी सल्लम ने क़याम किया। वल्लाहु आलम लगता है कि ये उनका बेटा है। फिर खैर ख्वाह थे, लेकिन अपनी किसी दोस्तियों की वजह से ये मुसलमान ना हुआ। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंची तो कहने लगा हमें इस पर बहुत दुख है और हम चाहते थे कि अल्लाह ताला आपको आफ़ियत से रखे। और इन्होंने जब मुझ नबी सल्लम से इस तरह की हमदर्दी का इजहार किया तो नबी सल्लम ने कहा कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो जाइए और अबू सुफियान की हौसला शिकनी करें, यानी उसको एहसास दिला दें कि मुसलमान कोई नहीं डरे और मुसलमान फिर मुकाबले के लिए तैयार हैं। और वाकई बात जो नबी सल्लम ने सोची थी वही हुई। आप पहले से तैयारी करके बैठे हुए थे और मुशरिकीन तकरीबन 36 36 माइल दूर रोहा पर पहुंचे तो उनको ख्याल हुआ और एक दूसरे को मलामत करने लगे, कहेंगे तुमने क्या किया, उनकी शाना शौकत तोड़कर इनको ऐसे छोड़ के आ गए, अभी भी इतने सर वहाँ मौजूद हैं जो तुम्हारे लिए दर्द सर बन सकते हैं, चलो इनको जड़ से साफ करो। इनको थोड़ी देर से समझ आई और एक अच्छे लीडर को बात पहले समझ आ गई, लेकिन ये सतही राय थी जो उनकी तरफ पेश की कि उनमें हौसला ही नहीं था। सुफियान बिन उबैया ने इस राय की मुखालफत की, कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ख़तरा है कि जो मुसलमान ओहद में नहीं आए थे वो भी अब तुम्हारे खिलाफ़ जमा हो जाएंगे, इसलिए चुप करो वापस चलो, फतह जितनी को हो गई है वही बहुत है। अगर तुम मदीना पर चढ़ोगे तो मुझे डर है कि फिर तुम पे कोई मुश्किल आ जाएगी। और मतलब उनका मामला वही था कि इरादा था किसी का नहीं, कोई राय कबूल करता कोई ना करता। खैर फैसला किया कि मदीना चलते हैं, लेकिन अभी पड़ाव छोड़कर अबू सुफियान और उसके फौजी हिले भी नहीं थे कि माबत खुजाई पहुंच गए। अबू सुफियान को मालूम ये था कि ये नहीं पता था कि ये मुसलमान हो गया। कहा माबत पीछे की क्या खबर है? माबत ने प्रोपेगंडे का एक सख्त हमला किया उन पे और कहा कि बस मत पूछो, मोहम्मद सल्लम तो अपने साथियों को लेकर तुम्हारे पीछे ही आ रहे हैं और इतनी बड़ी जमात उनके साथ है जो मैंने कभी नहीं देखी, और तुम्हारे खिलाफ़ गुस्सा भी उनको बहुत है। जो खुद में पीछे रह गए थे वो भी आ रहे हैं, जो कुछ उनका ज़ाया हुआ है वो उस पर बड़े शर्मिंदे और अब तुम्हारे खिलाफ़ खूब भड़के हुए हैं। अबू सुफियान कहेंगे, अरे भाई ये क्या बात कर रहे हो? महाबत कहेंगे, वल्लाह ही मेरा ख्याल है तुम कूच करने से पहले पहले घोड़ों की पेशानियाँ देख लोगे, यानी वो लश्कर बस तुम्हारे पास ही आ रहा है और इस टीले के पीछे से उस लश्कर का पहला हिस्सा जो है वो आ जाएगा। अबू सुफियान कहने लगे, वल्लाह ही हमने फैसला किया कि इन पर पलट कर फिर हमला करें और इनकी जड़ काट के रखें। महाबत कहेंगे, ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी खैर ख्वाही की बात करता हूँ। बस ये बातें सुनकर मक्की लश्कर के हौसले टूट गए, घबराहट और रोब तारी हुआ, और इसी में आफियत नजर आई कि मक्का की जानेब अपनी वापसी जारी रखे। अबू सुफियान ने इस्लामी लश्कर को ताकुब से बाज रखने और इनसे दोबारा टकराव से बचने के लिए एक असाबी हमला किया, और वो क्या था कि अबू सुफियान के पास से कबीला अब्दुल कैस का एक काफिला गुजरा। अबू सुफियान ने कहा कि क्या आप मोहम्मद को मेरा एक पैगाम देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मेरा वादा किसके बदले, आप जब लोग मक्का आएंगे तो कास के बाज़ार में आप लोगों को इतनी किशमिश, यानी ये जो राइजन होती है सोंगी जिसको बोलते हैं, खुश्क अंगूर दूंगा जितनी आपकी ये ऊँटनी उठा सके। यानी लालच दिया कि बस वहाँ जाके झूठी खबर फैला दो कि अबू सुफियान बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है। अबू सुफियान ने कहा कि मोहम्मद सल्लम को ये खबर दे दें कि हमने उनकी और उनके दोस्तों की जड़ काट देने के लिए दोबारा पलट कर हमला करने का फैसला किया है। इसके बाद जब ये काफिला हमरुल असद में नबी सल्लम और सहाबा के पास से गुजरा तो इनसे अबू सुफियान का पैगाम कैसे सुनाया और कहा, देखो लोग तुम्हारे खिलाफ जमा हो गए, इनसे डर जाओ। लेकिन आपको पता है इस पे क्या हुआ, तफसीर में आप पढ़ चुके हैं। उनका ख्याल था कि मुसलमान डर जाएंगे, लेकिन सहाबा किराम ने कहा, हसबुनल्लाहु व नियमल वकील, हमें अल्लाह काफ़ी और वो बेहतरीन कारसाज है। बस इस ईमानी कुव्वत की वजह से वो लोग अल्लाह की नेमत और फजल के साथ पलटे कि इनको किसी बुराई ने ना छुआ, और उन्होंने अल्लाह की रजामंदी की पैरवी की, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतवार के दिन हमरुल असद तशरीफ़ ले गए थे और बुध तक वहीं रहे, यानी 9, 10 और 11 शवाल। इसके बाद मदीना वापस आए। मदीना वापसी से पहले अबू अज़्ज़ा आपकी गिरफ्त में आ गया। ये वो शख्स था जिसे बदर में गिरफ़्तार किए जाने के बाद इसके फ़कर और लड़कियों की कसरत के सबब इस बात पे छोड़ दिया गया था कि अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ किसी से तआवुन नहीं करेगा। शुरू में इस पे बात हुई थी, लेकिन इसने वादा खिलाफी की और अपने अशार के ज़रिए अल्लाह के नबी और सहाबा कराम के जज्बात को भड़काया। बहरहाल ये मुसलमानों से लड़ने खुद भी जंग उहद में आया। जब ये गिरफ़्तार हुआ, अल्लाह के नबी की खिदमत में लाया गया, कहने लगा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ख़ता माफ़ कर दो, मुझ पे एहसान करो, मेरी बच्चियों के खातिर मुझे छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ कि अब दोबारा ये कुछ नहीं करूँगा। आपने फरमाया, अब ये नहीं हो सकता कि तुम मक्के में जाकर अपने रुखसार पर हाथ फेरो और कहो कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो मरतबा धोखा दिया। इस पे आपकी वो मारूफ हदीस जो बहुत खूबसूरत है अपने लिए नसीहत लेने के लिए, और वो क्या कि ला यल्दगुल मोमिनु मिन हिजरिन वाहिद, कि मोमिन एक सुराख से दो मरतबा नहीं डसा जाता। इसके बाद हज़रत ज़ुबैर या फिर हज़रत आसिम को आपने हुक्म दिया कि इनको मार दो। सीख रहे हैं आप लोगों से मामला करना, हम एक जगह काम करते हैं वही ख़ता फिर दोबारा करते हैं, फिर उसको आज़माते हैं। आज़माए हुए को कभी आज़माना नहीं चाहिए। हाँ, इंसान की इस्लाह हो जाए, पहले हालात और थे अब तज़किया हो गया तो और बात है, दिल बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन अगर सूरत हाल ना बदली और सिर्फ कोई अपनी जान छुड़ाने के लिए आपसे बचने के लिए ऐसी बातें करे तो फिर ऐसी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। इसी तरह मक्के का एक जासूस था मुआविया बिन मुगीरा बिन अलास, वो भी मारा गया। कहता है कि अब्दुल मलक बिन मरवान का नाना था। उहद के रोज़ जब मुशरिक वापस गए तो ये अपने चचाजाद भाई उस्मान बिन अफ़ान से मिलने आया। उस्मान ने इसके लिए अल्लाह के नबी से अमान तलब की। आपने इस शर्त पर अमान दे दी कि अगर वो 2-3 रोज़ के बाद पाया गया तो कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन जब मदीना इस्लामी लश्कर से खाली हुआ तो ये शख्स कुरैश की जासूसी के लिए 3 दिन से ज़्यादा ठहर गया, जैसे कि जैसे ओवर स्टे हो गया, कोई वीज़ा एक्सपायर हो चुका था। जब लश्कर वापस आया तो भागने की कोशिश की तो अल्लाह के नबी ने ज़ैद बिन हारिस और अम्मार बिन जासिर को हुक्म दिया और उन्होंने इस शख्स का पीछा किया और इसको मार दिया। आपको अल्लाह के नबी कैसे लीडर लग रहे हैं? बेदार मगज़ ना, हौसले वाले। हमेशा लीडर बहुत हौसलामंद होना चाहिए, और हौसलामंद लोग ही लीडर बनते हैं, वरना कौमें डूब जाती हैं। बहरहाल, गज़वे हमरुल असद एक पूरी जंग थी, कुछ इसको अलग कहते हैं, कुछ गज़वे उहद ही का ख़ात्मा कहते हैं। अगर देखा जाए तो जंगे उहद में फतह हुई के शिकस्त सब कुछ साथ रख के देखिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शुरू में मुसलमान जीते, कुफार हारे, फिर मैदान जंग कुफार के हाथ में आया, मुसलमानों का जानी नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, एक गिरोह भाग भी गया शिकस्त खा के। लेकिन अगर देखा जाए तो मुसलमानों को वो शिकस्त नहीं हो सकी जो हो सकती थी, और मक्का वालों को वो फतह नहीं हुई जिसको फतह कह सकते हैं, राइट? जिसको कहते हैं ना कि मैच ड्रॉ हो गया, बराबरी का मामला था। मुसलमान काफिरों के लश्कर पर कब्ज़ा तो नहीं कर सके, और मदीना पर कुफार ने कब्ज़ा नहीं किया। दोनों तरफ से बातें इसी तरह की रहीं, लेकिन बहरहाल एक तकलीफ़ जो हुई थी वो ये थी कि बदर में जो फतह हुई थी ना, उसके ऊपर असर पड़ा। आपका एक प्रोग्राम बहुत अच्छा हो और दूसरा कम अच्छा हो या बिल्कुल अच्छा ना हो, तो पहले का असर भी जाने लगता है। फिर आप देखिए कि मुसलमानों का कोई एक शख्स काफिरों की कैद में नहीं आया, कुफार ने कोई माले गनीमत नहीं लिया, फिर जंग का जो तीसरा राउंड था कुफार उसके लिए तैयार नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि मुसलमान बहरहाल इसमें गालिब थे। ये अलग बात है कि कुफार को भी इसमें फ़ायदा हुआ। फिर आप देखिए कि जंगों में एंड पे जो कुछ होता है आम तौर पे, वो इसमें नहीं हुआ। फिर यह हमारे असद का वाक़ हमें क्या बताता है कि उनको ख़ुद भी एहसास था कि हम जो फ़ायदा ले सकते थे वो हमने लिया नहीं, और जितना नुकसान मुसलमानों को दे सकते थे वो दिया नहीं है। तो वक्ती फ़ायदा उठाया उन्होंने मुसलमानों की एक भूल से, और उस पे मुसलमानों के अंदर से कुछ लोग मारे भी गए और अल्लाह के नबी को भी तकलीफ़ हुई, लेकिन बहरहाल ये फतह नहीं थी। और अबू सुफियान की जो कहानी और वापस जाना, उसको साफ लग रहा था कि अब अगर गया तो फिर हो सकता है ये जो थोड़ी सी इज्जत मिल गई है ये भी चली जाए। इसी पे कुरान पाक में सूरत आल इमरान में आयत 104 104 में भी आता है, वला तहिनु फिब्तिगाइल कौम इन तकूनु तालमून फइन्नहुम यालमून कमा तालमून व तरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून। मुशरिकीन के ताकुब में ढीले ना पड़ो, अगर तुम दर्द महसूस करते हो तो तुम्हारी तरह वो भी तो दर्द महसूस करते हैं। तुम लोग अल्लाह से जिस चीज़ की उम्मीद रखते हो वो उसकी उम्मीद नहीं रखते। तो यहाँ देखिए कि दोनों को दर्द पहुँचा, दोनों इंसान थे, चोट दोनों को लगी, तकलीफ़ दोनों को हुई, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस तरह से तसल्ली दिलाई कि अपने साथ साथ दूसरों को भी देखो। कुरान पाक में इस गज़वे पर तबसरा सूरत आल इमरान में बहुत ज़्यादा डिटेल से आंखों देखा वाक़या लगता है। अल्लाह ताला ने चौथे पारे में कुन तुम खैर उम्मत अखरिजत लिन्नास कहा उम्मत मुस्लिमा को, और साफ बता दिया कि जो उम्मत बड़ी होगी उसके मकासद बड़े होंगे, उसके अज़ाइम बड़े होने चाहिए, इसलिए मुसलमानों में छोटी छोटी कमज़ोरियाँ भी नहीं होनी चाहिए। अहले ईमान में अगर कुछ कमज़ोरियाँ रह जाती तो अगले मौके पर तकलीफ़ होती। इसलिए आप कह सकते हैं कि गज़वे उहद के ज़रिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों का तज़किया किया। फिर आप देखिए अब्दुल्ला बिन उबई अलग हो गया, पहचाना गया, अच्छा हुआ शुरू से पता चल गया उसकी हकीकत बेनकाब हुई, इस्लाम और नबी के ख़िलाफ़ जो उसके सीने में दुश्मनी छुपी थी वो उसका पर्दा चाक हुआ। फिर सादा लोग जो मुसलमान थे उनके अंदर मुनाफिकों और यहूद ने जो वसवसे फैलाए तो उनका इजाला भी हुआ, तो ये भी मुसलमानों के लिए प्लस पॉइंट था। इस एक गज़वे के बारे में सूरत आल इमरान की 60 आयतें हैं, 60 आयात, जिसमें सबसे पहले बातें वइज़ ग़दौत मिन अहलिका तुबव्विल मोमिनीन अल मकाइद अल क़िताल की बात हुई, 121 121 आयत है। फिर इसी तरह आखिरी जो बातें थीं वो इसी में अल्लाह ताला ने 179 आयत में पेश की कि मा कान अल्लाहु लियज़र अल मोमिनीन अला मा अंतुम अलै, कि ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह मोमिनों को ऐसी हालत में छोड़ दे कि जिस पर तुम हो, यहाँ तक कि खबीस को पाकीज़ा से अलग कर दे, और ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह तुम्हें गैब पर मुत्तले कर दे, लेकिन वो अपने पैगम्बरों में से जिसे चाहता है मुंतखब करता है। बस अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और अगर तुम ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। अल्लामा इब्ने क़य्यम ने इस पर बहुत ही तफसील से तबसरा लिखा है। हाफिज़ इब्ने हजर फरमाते हैं कि उलमा कहते हैं कि गज़वे उहद और उसके अंदर मुसलमानों को जो तकलीफ़ पेश आई, इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमतें थीं। मसलन नंबर एक, मुसलमानों को नाफरमानी के बुरे अंजाम और अल्लाह के नबी के हुक्म को ना मानने की नहुसत से आगाह किया गया, क्योंकि तीरंदाज़ों ने अपना मरकज़ छोड़ा था। ये अल्लाह के नबी की नाफरमानी थी, इसी वजह से तकलीफ़ हुई। दूसरी वजह ये थी कि अंबिया कराम को शुरू में तकलीफ़ में डाला जाता है, लेकिन आखिरी अंजाम उन्हीं का अच्छा होता है, क्योंकि अगर हमेशा उन्हें कामयाबी हासिल हो तो अहले ईमान में वास वो भी लोग आ जाएंगे जिनके अंदर ईमान नहीं, बस वो फतह परस्त हैं, कामयाबी परस्त हैं, रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। हालांकि सच्चे मोमिन फतह और शिकस्त से बेनियाज होकर काम करते हैं। तो अल्लाह सच्चे और झूठे को अलग करना चाहता है। फिर अगर हमेशा शिकस्त ही शिकस्त होगी तो वो मकसद पूरा नहीं होगा जिसके लिए अंबिया कराम भेजे जाते हैं। तो हिकमत का तकाजा क्या है कि इंसान अपने आप को इंसान समझे, और वो ये है कि कभी फतह कभी शिकस्त, कभी खुशी कभी गम, ताकि मुसलमान भी अपने आप को इंसान समझें और उनको अल्लाह से ताल्लुक़ मौजूद हो। फिर इस मौके पे मुसलमानों को दुआएं करने का भी तो मौका मिलता था ना। फिर शिकस्त के ज़रिए से थोड़ी खाकसारी, थोड़ी आजजी पैदा होती है, नफ्स का गुरूर टूटता है, और तकलीफ़ें आती हैं तो सब्र करके मुसलमानों के दर्जे बुलंद होते हैं। फिर एक हिकमत ये भी थी कि अल्लाह ताला ईमान वालों को अपना घर देना चाहता है, जन्नत। ऐसे दर्जात हैं कि जिनके लिए उनके अमाल के ज़रिए तो रसाई नहीं हो सकती थी, इसीलिए इब्तला और इम्तिहान के कुछ सबब मुकर्रर कर दिए। शहादत देना भी अल्लाह ताला की एक हिकमत थी कि कुछ लोगों को शहादत मिले। फिर एक ये भी हिकमत होती है जंगों की कि अल्लाह ताला जंग दुश्मनों को हलाक करना चाहता है तो उसके लिए इसबाब भी फ्राहम कर देता है। कुफर, जुल्म और अल्लाह के दोस्तों को तकलीफ़ देना, हद से बढ़ के सरकशी, ये सारी चीज़ें इंसानों को वाकई हकीकत में अल्लाह ताला की मदद से दूर कर देती हैं। तो ये था ग़ज़वा उहद, और इस पर अल्लाह ताला का तबसरा। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि वो हमें इन सारी बातों से सबक लेने वाला बना दे। ग़ज़वा उहद का मैदान हमारी ज़िंदगी का मैदान, इससे कुछ फ़र्क नहीं। ज़िंदगी का मैदान और उहद का मैदान कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। जो सबक वहाँ उन सहाबा के लिए थे, वही आज हम सब के लिए भी हैं। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नसीहत की ग़िज़ा लेने वाला बना दे।